అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః. ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తిభేద విభాగినే వ్యోమవద వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. ఓం సహనావవతు సహనౌ భునక్తు సహవీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః. అది బంద్ హై. విచార హమారి చల్ రహీ థీ కి జైసే సిపి మే తీన్ అంశ హై నా, పీచే వాలి ఆవృత్తి కియా కరో, యాద్ కియా కరో, సమజ్ గయే? కల్ జో బాత్ చలీ థీ ఉస్కో సంక్షేప్ మే కల్ యహీ విచార్ కియా థా నా కి సిపి మే జైసే తీన్ అంశ హై నా, కౌన్ కౌన్ సా యాద్ హై? ఏక సామాన్య అంశ హై, దూసరా విశేష అంశ హై, ఔర్ తీసరా కల్పిత విశేష హై. యాద్ హై నా? తీన్ అంశ హై సిపి మే, ఏక సామాన్య ఔర్ దూసరా విశేష ఔర్ తీసరా కల్పిత విశేష. కైసే హై తీన్ అంశ యే భీ విచార్ కియా థా. జైసే హమ్ బోల్తే నా భీ, జబ్ సిపి కో హమ్నే దేఖా పడీ హుయీ తో హమ్ కహతే హై చాందీ పడీ హై, जो है ना है, ये सामान्य अंश है सीपी का, है उसमें भी रहेगा ना. जिस समय हमारे को चांदी भास रही उस समय भी है तो ना साथ में रहेगा ना, चांदी है. और जिस समय हमारे को सीपी दिखेगी, हरिओम, जिस समय चांदी का भ्रम हमारा दूर हो जाएगा ना तो सीपी दिखेगी, फिर हम क्या बोलेंगे? హరిఓం హరిఓం మాతాజీ. ఫిర్ హమ్ బోలేంగే కి చాందీ నహీ హై, యే సిపి హై, హై అభీ భీ హై నా, పహలే భీ హై థా, పహలే హమ్ బోల్తే థే చాందీ హై యా కాగజ హై, అబ్ బోల్తే హై సిపి హై, యే బోలా నా హమ్నే, తో సిపి హై బోలనే కే సాథ్ మే హై తో పహలే వాలా హీ హై, సాథ్ మే సిపి లగ్ గయా నా తో విశేష హో గయా కి నహీ, పహలే సామాన్య థా, హై హై తో కిసీ కే సాథ్ భీ లగ్ సక్తా నా, चांदी है, कागज है, अबरक है, है तो सबके साथ लगेगा ना. लेकिन अब क्या हुआ, सीपी है तो विशेष हो गया ना. हाँ जी, कल हमने विचार किया था कि सीपी में तीन अंश हैं, एक सामान्य अंश है, दूसरा विशेष अंश है और तीसरा कल्पित विशेष है. तो सामान्य सीपी का अंश क्या है? इदम, इदम का अर्थ होता यह, हम कहते ना यह है, हमने कहा कुछ पढ़ा है वहाँ, सामान्य अंश है सीपी का है पना, जो सत्यता होती ना, सत्यपना जो सत्ता होती है सामान्य अंश है. और हमने बोला कि ये चांदी है, उस समय हमारे को सीपी का विशेष ज्ञान नहीं है, सामान्य तो है कि कुछ पढ़ा है, तो उसमें हमने ये बोला कि चांदी है या अभ्रक है या कागज है, तो है पना जो है ना यह है, ये सामान्य अंश है. कुछ भी हम बोलते ना यह कुछ पड़ा है, ये सामान्य अंश है. तो जब हमारे को सीपी में चांदी का भ्रम हो रहा है ना, उस समय भी सामान्य अंश है. सामान्य अंश तो उस समय भी है, लेकिन विशेष का उस समय ज्ञान नहीं है. इसका मतलब हुआ जो बहुत समय रहता है ना उसको सामान्य अंश बोलते हैं, जो बहुत देर रहता है उसको सामान्य बोलते हैं, जिसका दायरा बहुत बड़ा होता है ना उसको सामान्य बोलते हैं. कल भी हमने बोला था, जैसे हम लोग हैं, हम सामान्य लोग हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं ना अपनी इच्छा से, लेकिन जो विशेष होता है वो ऐसे हमारी तरह नहीं घूम सकता, उसको परमिशन लेनी पड़ती है, उसको घर घर से निकलने से पहले सोचना पड़ता है, कि मेरे साथ कोई आदमी होना चाहिए, मैं अकेला जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि वो अपने आप को विशेष मानता है ना। जो जितना विशेष होता जाएगा उतने उसका दायरा कम होता जाएगा, परिच्छिन्न होता जाएगा। वो जब सामान्य हो जाता है तो उसका दायरा बहुत बड़ा व्यापक हो जाता है। तो सामान्य अंश हुआ है यह कुछ है, तो विशेष क्या हुआ, यह सीपी है। अब है तो साथ में रहा, लेकिन सीपी उसके साथ विशेषण जुड़ गया तो विशेष हो गया, यह सीपी है। ये जो है ना सीपी है, ये विशेष अंश है, लेकिन ये कब भासता है, इसके भासने से, इसकी प्रतीति से भ्रांति का अभाव हो जाता, भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए विशेष है ये। तो भ्रांति क्या थी, भ्रांति थी हमारे को कि यह कागज है, यह चांदी है, यह भ्रांति थी। यह भी विशेष तो है, चांदी है यह भी विशेष है ना, है के साथ में चांदी विशेषण लगा है, चांदी है, परंतु यह कैसा विशेष है, कल्पित विशेष है। इसके साथ में एक और शब्द लग गया कल्पित, कल्पित का अर्थ होता जो कल्पना किया हुआ है, हमारे अविद्या के द्वारा जो कल्पित है। उसी प्रकार इन्होंने बताया था कि ब्रह्म में तीन अंश हैं, एक सामान्य अंश है और दूसरा विशेष अंश है और तीसरा कल्पित विशेष है। यह कल हमने विचार इसी का किया था कि अजाड़ ब्रह्म में तीन अंश त्यों, जिस प्रकार अजाड़ का अर्थ है चेतन, चेतन ब्रह्म में उसी प्रकार तीन अंश हैं जिस प्रकार सीपी में तीन अंश हैं, सीपी जड़ है, ब्रह्म चेतन है। वैसे जब आप विचार करके आगे जाएंगे ना, सूक्ष्म दृष्टि से सब विचार करेंगे, तो ब्रह्म में अंशांशी भाव नहीं होता, एक ब्रह्म में अंश कैसे बनेगा, ब्रह्म तो एक है ना, अद्वितीय एकमेवा अद्वितीयम, ऐसा श्रुति कहती है, एकम एव अद्वितीयम, वो एक है अद्वितीय है। जब ऐसा ब्रह्म है तो उसमें अंश कैसे आएगा, अंश तो होता पार्ट को बोलते ना, तो एक में पार्ट नहीं किया जा सकता कभी भी, जो अखंड होता है ना उसको कभी भी पार्ट में आप नहीं कर सकते। ब्रह्म अखंड है, उसमें अंश अंशी भाव बनता नहीं है। केवल हमारे को समझाने के लिए तीन अंश बताए, वैसे वो सामान्य विशेष उसमें बनता ही नहीं है, अखंड है ना वो, अखंड मंडलाकारम, वो तो अखंड है, एक है। अखंड का अर्थ होता है जिसमें खंड नहीं है, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसको अखंड कहते हैं। तो ब्रह्म अखंड है, उसमें अंश अंशी भाव बनता नहीं है यथार्थ में। केवल हमारे को समझाने के लिए तीन अंश किए कि सीपी का जैसे आपने तीन रूप समझे ना, तीन अंश, उसी प्रकार आप ब्रह्म को समझने के लिए सरल कर दिया कि ये सामान्य है, यह विशेष है। जैसे हमारा जो ये जो लौकिक व्यवहार में हम लोगों को, हम सामान्य भी हैं विशेष भी हैं, आम लोगों के लिए हम लोग सामान्य हैं, लेकिन पति के लिए पत्नी, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, किसी की दृष्टि में हम पुत्र हैं, किसी की दृष्टि में हम पति हैं, किसी की दृष्टि में हम चाचा हैं, ताऊ हैं, सब है ना। ये विशेष हमारे साथ जुड़ गया, हमारे नाम के साथ। वैसे तो हम सामान्य हैं, आम लोगों के लिए हम सामान्य हैं, लेकिन जिसके साथ हमारा संबंध है उसके लिए हम विशेष हो जाते हैं। कहते हैं ना, हमारा आपके साथ विशेष संबंध है, विशेष संबंध बनाते हैं हम उनके साथ, बनाते हैं हम, होता नहीं है, मान लेते हैं कि हमारा आपके साथ विशेष संबंध है, विशेष लगाव है, विशेष प्रेम है। प्रेम तो प्रेम ही होता है, लेकिन विशेष प्रेम कहते हैं हम लोग, इसका मतलब उसको हम मानते हैं, परिच्छिन्न रूप में मानते हैं, उसको विशेष बोलते हैं। जो थोड़ी देर में होता ना, थोड़ी थोड़ी जगह होता, उसको विशेष बोलते हैं। तो ब्रह्म ऐसा थोड़ी है, विशेष उसमें विशेष हमने लगाया है ना, किसको लेकर के, चिदाभास को लेकर के लगाया है, जीव को लेकर के लगाया है, साक्षी को लेकर के लगाया है। तो ब्रह्म में भी तीन अंश हैं, एक सामान्य अंश है, एक विशेष है, एक कल्पित विशेष है। सामान्य अंश तो है ही है, उसकी तो बात ही नहीं है। तो कल ये हमने इसका अच्छी तरह विचार किया था। तो ये कहते हैं कि उभय अंश को सत्य जान ले, जो ब्रह्म में दो अंश है ना उनको सत्य जान ले, अथवा सीपी में जो दो अंश है उनको सत्य मान लो। सत्य का मतलब होता सच है, वो झूठे नहीं है। कौन से? एक तो सामान्य अंश और दूसरा विशेष अंश, वो दोनों सच हैं, सत्य हैं, झूठे नहीं हैं। वो रहते ही हैं, पहले भी थे अभी भी रहते हैं। ब्रह्म में भी जो सामान्य अंश है और विशेष अंश है वो दोनों रहते हैं। सामान्य तो है ना, ब्रह्म है, ये सामान्य अंश है, आत्मा है, या कुछ भी बोलेंगे, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, शरीर है, जो है ना इदम अस्ति, ये सामान्य अंश है, सामान्य चेतन बोलते हैं उसको। ब्रह्म का सामान्य चेतन अंश है और विशेष चेतन है, ये उसका सामान्य और विशेष है। और इस एक में कल्पित है एक, भले वो घटपट का चेतन हो, वो भी थोड़ी देर के लिए है ना, घटपट के साथ भासता है ना, वैसे तो उसका विशेष चेतन के साथ कोई अभेद नहीं है। कल भी हमने बताया था ना कि महाराज जी से जब पूछा गुरु जी से एक शिष्य ने, तो महाराज ने क्या बताया, उसने यही पूछा था ना कि कवण रूप दृष्टि बिनसायो कत है गयो ओह कतते आयो। उसने पूछा महाराज जी, ये जो हमारे को आंखों से इंद्रियों से दिखाई पड़ रहा है ना कवन रूप, ये क्या है? संसार को देख करके बोला था भी, ये क्या है दृष्टियो, जो दृष्टि में आ रहा है ना, ये क्या है? और बिनसायो, दूसरा ये था कि बिनस भी रहा है, दृष्टि भी पड़ रहा है और हमारे देखते हुए जा भी रहा है, देखते देखते हमारी आंखों से अलोप हो रहा है, दिख भी रहा है, कवन रूप, इसका रहस्य बताइए, ये क्या है? दिखता भी है और देखते देखते इसका अभाव भी हो रहा है। और ये भी बोला कि ये भी बताइए कि कतह गयो महाराज जी, ये जो अलोप हो जाता, अभाव हो जाता, ये कहाँ जाता है? जब दिखना बंद हो जाता हमारी आंखों से, एक आदमी आज है कल को नहीं, वो कहाँ गया? कहते हैं वो कहाँ जाता है। और कतते आयो, ये आया कहाँ से? ये सभी प्रश्न किए कि ये दिखाई पड़ रहा है, जो जा भी रहा है, दिख भी रहा है, ये जाता कहाँ है और आया कहाँ से है? ये सभी प्रश्न थे ना। तो कितने दृष्टांत महाराज जी ने दिए, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई। ये प्रश्न पहला उत्तर दिया महाराज जी ने कि हे शिष्य, ये तेरे को जो दिखाई पड़ता है ना, ये ऐसा है जैसे बाजीगर जो है ना, बाजीगर समझते ना, तमाशा दिखाने वाला, बाजी पाई, बाजी का मतलब खेल हो जो खेलता है, तो क्या कुछ बना देता है, एक उसके पास करमंडल होता है, ऐसे उसको करता है तो उसमें से पैसे कितने गिरते हैं, नोट निकलते हैं, पैसे निकलते हैं। कई बार एक लड़के को बैठाता, उसका उसकी गर्दन काट देता है, अलग कर देता है लोगों के सामने, और फिर जोड़ देता है। यदि वो गर्दन काट के जोड़ सकता हो तो उसको जहां तमाशा करने की जरूरत नहीं है, जो काट के जोड़ सकता हो ना तो उसको क्या जरूरत है। लोगों को इकट्ठा करके डमरू बजा करके पहले कहता है कि मेरे तमाशा देखो, तो यदि वो ऐसी उसमें शक्ति हो तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। पैसा निकाल देता है इतना कि ढेर लगा देता पैसे का, लेकिन जब खेल समाप्त करता है तो वही झूठा लेकर के लोगों से मांगता है कि पैसा। यदि नोट उसके पास होते तो मांगता क्यों? मांगता है कि नहीं, जब तमाशा समाप्त कर देता है, एक बार आपकी जोड़ी भर देगा पैसे से, बाद में जब तमाशा उससे समाप्त हो जाता था, जो खड़े होते सबके पास ऐसे ऐसे मांगता है, तो पैसे होते उसके पास तो मांगता क्यों? तो कहाँ से आए वो पैसे? देखे हैं ना नोट आपने? आपने नहीं देखे होंगे, हमने देखे निकलते हुए, हमने देखे हैं। हमारे यहाँ एक बार आया था तो उसने नोटों का ढेर लगा दिया, जब समाप्त किया तो वो पैसे मांग रहा था। तो इसका मतलब महाराज जी कहते हैं, बाजीगर जैसे बाजी पाई, ये जो संसार है ये बाजीगर की बाजी की तरह है, नाना रूप भेख दिखलाई, अनेक प्रकार का वो तमाशा दिखाता है। तो कहते महाराज जी होता क्या है, सांग उतार थम्यो पसारा तब एको एकंकारा। जब उसने स्वांग उतार दी ना, स्वांग कहते हैं जो उसका उस ऊपर से बनाया हुआ था, उसने झूठा बेस जो बताया था ना, जब उसने उतार दिया ना, तब एको एकंकारा। बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवे अकेला, बाजीगर ने स्वांग जो बनाया था ना, स्वांग कहते हैं झूठा जो बनाया था तमाशा, उसने सकेला जब इकट्ठा किया ना उसने अपना समान तमाशे वाला, अपने रंग रवे अकेला, तो अकेला ही बच गया वो, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कहते हैं बाजीगर ने जैसे बाजी पाई है ना, इस प्रकार ये संसार है। फिर कहते हैं कि क्या हुआ, बीज बीज देखो बहुत प्रकारा, फल पाके ते एक अंकारा। बीज हमने देखा तो अनेक प्रकार के, उसमें से शाखाएं निकली है, टाने निकले हैं, फल निकले हैं, तब एको एक अंकारा। उसके बाद फिर जब बीज लगा तो एक ही बन गया, बीज से बहुत कुछ निकला था, बीज से जब उसको उसके बाद में पौधे को फिर बीज लगता है तो फिर बीज में सब समाप्त हो जाता है। सगल घटा में एक आकाश, घट टूटे थे वही प्रकाश। बहुत दृष्टांत दिए महाराज जी ने, जैसे घड़ों में बहुत ज्यादा परछाई पड़ती है, सब घड़े फोड़ दो तो परछाई कहाँ गई, कहीं भी नहीं है, एक एक ही बचता है। ये कहते हैं उसी प्रकार ब्रह्म में तीन अंश आपको भाषित होते हैं, उभय अंश जो है उनको सत्य जान ले, जो उसका विशेष है और सामान्य अंश है दोनों सत्य हैं। भाव जो सामान्य चेतन सब में व्यापक है ना, वो भी सत्य है, और जो साक्षी है वो भी सत्य है। तो जो जीव है ना, जीव ये है कल्पित, कल्पित अंश है ना, कल्पित विशेष, जो जीव मान रहा है ना अपने आप को, ये कल्पित विशेष है, विशेष के साथ कल्पित लगा हुआ है, केवल ये उपाधि के कारण भास रहा है, वैसे नहीं है, इन्हें अपने आप को उपाधि के अंदर मान रखा है, इसलिए अपने आप को अलग मानने से लगता है कि मैं जीव हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, मैं छोटा हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्य हूं, ऐसा मानता है ना, ये कल्पना करके मानता है। जो कल्पना से बनता है ना उसको कल्पित कहते हैं, ये जो कल्पना से बना हुआ है ये झूठा है। जब ये कल्पना इसकी हट जाएगी तो ये साक्षी हो जाएगा, तो साक्षी का और ब्रह्म का दोनों का अभेद है, ब्रह्म जो सामान्य चेतन है और साक्षी चेतन है, दोनों एक हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि तृतीय त्याग दे, जो तृतीय कल्पित विशेष ना उसको छोड़ दो, भाव जीवपना छोड़ दो, जो अपने अपने आप को जीव मान रखा है ना, पुण्य है पापी है, ये सब को छोड़ दो तो क्या मोक्ष मिले। मोक्ष मिले का अर्थ क्या है, मोक्ष कहीं से आएगा नहीं, आपकी मान्यता छोड़ दो, आप मुक्त तो आप हैं, केवल जो मान रखा है ना, जो कल्पना से सृष्टि आपने बनाई हुई है, उस सृष्टि को छोड़ दो तो ईश्वर सृष्टि केवल बचेगी, ईश्वर की सृष्टि जो ईश्वर से अलग कहीं नहीं है, केवल हमारे मन की बनाई हुई सृष्टि हमारे को परेशान करती है, जो हमने मन से कल्पना की हुई सृष्टि है ना, वो हमारे को, जैसे कहते हैं मकड़ी होती ना, मकड़ी वो जाला अपने मुख से निकालती है और उसी में फंस जाती है, उसी में फंस जाती है, अपने मुख से निकालती है ना तो उसी में फंस जाती है, उसी के अंदर ही घूमती रहती है। ये मकड़ी जाल है ना जो हमने बनाया हुआ है, हमारा हमारे मन से ही माना हुआ ना, जिस जिसको हम मन से छोड़ते जाएंगे वो सृष्टि हमारे से इधर मिलेगी नहीं कहीं। एक हमने मन से मान लिया कि ये हमारा पति है, मना है ना हमने, तो जिस दिन तलाक होता है उस दिन क्या होता है, वो पति कहीं जाता नहीं है, वो यहीं घूमता रहता है, हमने मन से छोड़ दिया है तो कहाँ गया, वो गया थोड़ी है, ये संसार जाएगा कहीं नहीं। जैसे हम एक पति को छोड़ सकते हैं ना, केवल मन से छोड़ा है, वो तो यहीं घूम रहा हमारे सामने, तब भी उसको देख करके हमारे को कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि हमने संबंध छोड़ दिया उसके साथ। तो इसी प्रकार जो संसार है इसको छोड़ने का मतलब है कि ये भागेगा कहीं नहीं, यहीं रहेगा। महाराज जी कह रहे थे ना कि जाएगा कहीं नहीं, खाएंगे पिएंगे रहेंगे सोएंगे, लेकिन संबंध छोड़ देंगे उसके साथ, ये हमारा नहीं है। तो हमने इसको केवल माना है ना, अपने मन से सृष्टि हमने मानी कि ये मेरी है, ये कार मेरी है, ये कोठी मेरी है, वही कोठी जब हम बेच देते हैं तो क्या होता है, कार बेच देते हैं तो हमारे सामने से भी निकलती है तो कष्ट नहीं होता, क्योंकि मेरा जो उसमें ममता थी वो हमने छोड़ दी है, हमारी ममता हमारे को दुखी कर रही है, पदार्थों में हमारी ममता है और शरीर में हमारी अहंता है, अहम है कि मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये जो मैं, इसमें मैं पना छोड़ दो, पदार्थों में ममता छोड़ दो, तो फिर कोई कष्ट होता ही नहीं, अकेला ही बचेगा। ये कहते हैं तृतीया त्याग दे, जो कल्पित है ना विशेष, उसको त्याग दो तो मोक्ष मिले। मोक्ष तो है ही है, प्राप्त की प्राप्ति है और निवृत्त की निवृत्ति है। निवृत्त पहले ही है, केवल जो मान्यता है उसको हटाना है। ये तो बहुत हमने देखा है ना व्यवहार में, कि जिसकी हम मान्यता छोड़ देते हैं वो हमारे को दुखी नहीं करता। हम शहर में रहते हैं जहां कितने लोग हर रोज मरते हैं, हम लोग रोड पे जा रहे होते तो हमारे सामने से मुर्दे निकल जाते हैं, कभी भी हमारे को कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा उसके साथ संबंध नहीं है। जब हमारे घर से कोई मरता है तो क्या होता है, वो भी तो वैसा ही मुर्दा है ना, उसको देख करके हम क्यों दुखी होते हैं, हमने उसके साथ संबंध माना हुआ है कि ये मेरा है। मेरा जब छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, भले घर में कोई मरता। मैंने उस दिन भी यहां विचार किया था ना, बन से सदन सबे कर समझो मन ही माहे उदासा। बन से सदन कहते घर को आप जंगल मानो, जंगल में कोई किसी का नहीं होता है, तो घर को जब जंगल मान लोगे तो जंगल के जो जीव होते हैं अलग अलग रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन घर में कभी ऐसा माना नहीं ना जाता हम लोगों को, हमारा संबंध टूटता नहीं है। पदार्थों में ममता छोड़ दो, इसमें अहंता छोड़ दो। शरीर को अपना मत मानोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम तो कहते ना मेरा शरीर है, मेरा शरीर कह करके भी ये नहीं कहते कि मेरा अलग होता है, मैं अलग होता है। बोलते तो हैं कि मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं, परंतु हम कहते मैं आंख हूं, मैं कान हूं, ऐसा समझते तभी दुखी होते हैं ना। जब मेरा कहते तो मेरा अलग होता, मैं अलग होता है। मेरा कहते हुए हम अपने इसको मैं मानते हैं, मेरी आंख देखती है कहते हैं, लेकिन मेरी आंख देखते कौन बोलता, कहते मैं देखता हूं, आंख मेरी है परंतु देखता मैं हूं, तो उल्टा हो गया कि नहीं। यह कहना चाहिए कि मेरी आंख देखती है, कहते हैं मैं देखता हूं, तो फिर हम आंख हुए तभी तो कह रहे हैं ना। जब हमने अपने वो आंख माना है ना तभी कहते मैं देखता हूं, आंख देखती कि हम देखते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं। हमने अपने आप को कान मान रखा है इसलिए बोलते हैं ना। यही तो कल्पित विशेष है, कल्पित विशेष क्या, यही है मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, ये कल्पित है, लेकिन हमने इसको अपने साथ अटैचमेंट कर रखा है। ये बोलना तो हर एक को पड़ेगा, तत्वज्ञानी भी यही बोलेगा कि मैं देखता हूं, बोलेगा वो, लेकिन उसकी मैं का, हमारी मैं का अंतर होता है। वो यथार्थ मैं को लेकर के बोलता है कि मैं साक्षी रूप में देखता हूं, हम बोलते हैं कि मैं आंख के साथ अटैच होकर के हम बोलते हैं कि मैं देखता हूं, वो बोलता है कि नहीं मैं साक्षी रूप से आंख जिसको देखती है उसको और आंख को दोनों को देखता हूं, वो आंख का भी साक्षी रहता है। हम आंख के साक्षी नहीं रहते, हम तो जो पदार्थ है सामने उसको देखते हैं आंख के द्वारा। तो इतना ही फर्क है भी कल्पित विशेष को कहते हैं तृतीया त्याग दे, तृतीया जो कल्पित विशेष है उसको छोड़ दो तो मोक्ष मिले, तब आप मुक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे अब आ गया भिद भ्रांति जो पंचाधवम, ये कहते हैं आपने बहुत विस्तार से पहले बताया प्रपंच का मिथ्यात्व, पर अभी भी हमारी समझ में नहीं आया, और विस्तार से बताओ। तब कहते हैं कि भिद भ्रांति, भिद भिद कहते हैं भेद को, भिद भ्रम आदि जो पंचाधवम भवम, जो भेद भ्रांति आदि, भेद भ्रांति होती है भेद, एक दूसरे से अंतर फर्क बोलते हैं ना, भेद एक दूसरे से, इसका इससे ये इससे अलग है, इसको भेद बोलते हैं, अंतर बोलते हैं, फर्क बोलते हैं, एक दूसरे से अलग। कहते हैं भी भेद भ्रांति आदि पांच प्रकार का संसार है। कौन कौन सी भ्रांति होती है, भ्रांति मतलब भ्रम होता है, अध्यास होता है, अध्यास का भी आगे बहुत बड़ा विस्तार है। भ्रम जिसको हम बोलते हैं, भुलेखा हमारे को पड़ जाता है, मोटी दृष्टि भुलेखा पै गया हमारे को, ये मोटा है, उसी को भ्रम कहते हैं। ये कहते हैं कि भेद भ्रांति आदि पांच प्रकार का संसार है। एक है भेद भ्रांति, और दूसरी कौन सी भ्रांति है, कर्ता भोगता बने की भ्रांति है, और तीसरी है संग भ्रांति, और चौथी है विकार भ्रांति, पांचवी है ब्रह्म से अलग संसार के सतपने की भ्रांति। ये पांच प्रकार का कहते संसार है। एक पंजाबी का भी श्लोक है, भेद भ्रम कर तत् भ्रम, पुन संग भ्रम विकार, ब्रह्म इतर जग सत है, पांचों भ्रम संसार। यही बात है जो यहां कही है, यही बात है। भेद भ्रम कर तत् भ्रम, पुन संग भ्रम, फिर विकार, फिर ब्रह्म इतर जग सत है, पांचों भ्रम संसार। वही बात होगी ना, एक भेद भ्रम है, पंजाबी विच दसांगे ना, भेद भ्रम है। दूजा है करता का करतापने का भेद, और तीसरा है संग भेद, चौथा है विकार भेद, पंजवा है ब्रह्म तो अलग संसार नु सत मानना। ये पांच प्रकार का भ्रम है। ये कहते भ्रम ही संसार है, अलग कुछ नहीं है। तो क्या भ्रमीय भ्रम किसका होई, क्या भ्रमीय भ्रम किसका होई, भ्रम किसका है, भ्रमना क्या है, केवल ये भी तो मान्यता है ना हमारी। माधवे क्या कहिए, भ्रम ऐसा जैसा मानिए होए ना तैसा। जिसको हम जैसा मानते हैं वो वैसा नहीं होता, यही तो भ्रम है, और कोई भ्रम कोई यही अध्यास है। हम अपने आप को जीव मान लिया, हम जीव नहीं है और क्या है, इतना ही तो समझना है ना। इसको अलग अलग समझाना है, हमने अपने आप को जीव मान रखा है। गुरु महाराज हमारे को बार बार कहते हैं कि तुम जीव नहीं हो। एक जो बच्चा है ना, कोई बच्चा सोया हो ना, वो सोया हो, बच्चा कोई सोया हो तो उसको उठने पर कोई कहता कि आज जब तुम सोए थे तो आपके मुंह में सांप घुस गया, आपके अंदर सांप चला गया, सांप। किसी बच्चे को उठते हुए बताओ ना कि जब सोए थे आप, सोए सोए आपके अंदर सर्प चला गया, तो क्या हुआ उसको? वो बच्चा जो, उसको भूख भी नहीं लगती, उसको रोटी खाने को मन नहीं करता, उसकी भूख उड़ जाती है, उसका शरीर सूखने लगता है, उसके अंदर गया कुछ नहीं है, लेकिन आपने बोल दिया ना कि आपके अंदर सर्प चला गया, तो उसको भ्रम हो गया कि मेरे अंदर सर्प चला गया, मैं नहीं बच पाऊंगा। वही बच्चा ऐसे जब बिल्कुल उसकी शरीर उसका क्रिश हो जाता, उठना भी नहीं, उसको उठा भी नहीं जाता उससे, तो एक दिन उठ के सोया था, जब उठा तो उसने, उसकी माँ ने बोला कि बच्चा आज तुम जब सोए थे तो आपका सर्प भाग गया निकल के, यही बोला ना कि मैंने देखा आपके अंदर से सर्प निकल के भाग गया, तो बच्चा उसी दिन से मोटा होना शुरू हो जाता है। उसका सर्प कहीं से आया नहीं, कहीं से गया नहीं है, लेकिन शब्द का सर्प उसके अंदर घुस गया, शब्द के द्वारा घुस गया था, शब्द से निकला है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका फर्क पड़ रहा कि नहीं, उसी दिन से वो ठीक होना शुरू हो जाता है। जैसे किसी को हम लोगों को ही भ्रम हो जाता ना कि आपको भूत ने पकड़ लिया है, बोल देता ना उसको एक आदमी कि तेरे को भूत ने पकड़ लिया है, तो वो रात को भी मतलब उठ के भाग जाता, कभी कभी हम लोग भाग जाते हैं, जहाँ सिर मारने लगते हैं इधर उधर जाते हैं, फिर कोई कहता है कि वो फलाना आदमी उसके पास जाओ वो भूत निकालता है, तो जब जाते हैं महात्मा के पास तो कहते हैं महाराज मेरे को भूत ने पकड़ रखा है, तो उन्होंने कहा भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, तुम्हारे को ऐसे किसी ने बोल दिया, तो उसी दिन से हम ठीक हो जाते हैं, ना भूत आया था ना भूत कहीं गया है, लेकिन शब्द के द्वारा हमारे अंदर घुस गया, शब्द से निकल गया। जब किसी को शब्द से भ्रम हो जाता है तो प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा? शब्द से हमारे को भ्रम हो गया सर्प का, सर्प से शब्द से निकल गया, लेकिन जब हम देख रहे हैं तो इसका भ्रम क्यों नहीं होगा? प्रत्यक्ष तो हो ही जाएगा ना, शब्द प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान होता है, ये सब प्रमाण है ना, शब्द प्रमाण से भी हमारे को भ्रम हो जाता है, तो प्रत्यक्ष से क्यों नहीं होगा? इसको तो हम आंखों से देखते ना हर रोज, इसलिए भ्रम हो जाता है। तो भ्रम नाम की कोई चीज होती नहीं है, जैसे शब्द का भ्रम था ऐसे ही प्रत्यक्ष का भी है। रात को हमारे को किसी ने हमारा स्वप्न में गला काट दिया ना, किसी ने स्वप्न में हमारा कोई गला ही काट गया, लेकिन उठने पर गला कहाँ गया, किसी ने काटा नहीं है। हम अपने आप का कई बार स्वयं जो है ना, हम भागते, हमारे पीछे पुलिस लगी है, सपने में भाग रहे हैं, जब उठते तो कुछ भी नहीं है, तो क्या हुआ? भ्रम ही तो है, कहीं भागे नहीं है, रज करके सोए हैं, अभी पूरा पूरा भोजन करके सोए हैं, अभी सपना शुरू हुआ तो भूखे मर रहे हैं, कोई भोजन नहीं देता। हम प्रत्यक्ष में रजे हुए सपने में भूखे हो जाते हैं, सपने में हमने भंडारा खाया, अभी उठे हैं तो भूख लगी हुई है, तो क्या हुआ? यही है ना ब्रह्म, कुछ भी नहीं है। इसलिए महाराज कहते ना, सपने ज्यों संसार, ये सपने जैसा है, सपने जैसा। बार बार महाराज जी क्यों कहते हैं, जैसा सपना रहन का तैसा संसार, जैसे रात्रि का स्वप्न होता है ना ऐसा संसार है। इसको समझने में कौन सी देरी है, स्वप्न को हम लोग समझ रहे हैं लेकिन उसके साथ इसको नहीं घटा पा रहे, क्योंकि वो सपना जो है वो क्षण मात्र का है, ये सपना लंबा है, ये संसार भी एक सपना है लेकिन लंबा है। इसलिए लंबा है कि हमारी निद्रा बहुत लंबी है, सपना तो उतनी देर आता है जितनी देर हम सोए हैं, तो ये वाला जो सपना है ये क्यों नहीं हट रहा, क्योंकि हम जागे नहीं हैं। जब जागेंगे तो सपना समाप्त होगा ना, जब जागेंगे तो सपना कहाँ रहेगा। ये सपना कह रहे हैं महात्मा लोग भी, ये स्वप्न है लेकिन हटता नहीं क्योंकि हम जागे नहीं है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधित, कहते हैं उठ और जाग और महात्मा के पास जाओ, उनसे उपदेश लो। निशत ए पर है कैसा, कहते बहुत कठिन है, दुर्गस बहुत है, ये दुर्ग कहते बहुत कठिन है। इसको इसलिए निकालते कि हम लोग जागे नहीं हैं, बोलते हैं कि जागे हैं, जिस दिन जागते हैं ये हमारे को निश्चित है भी जब जागेंगे सपना समाप्त हो जाएगा। संसार जो है सपने जैसा है, गुरु महाराज कहते हैं जब सपना है, सपने जैसा का मतलब होता सपना है, तो सपना है तो फिर हटता क्यों नहीं है, हम जागे नहीं है। जब जाग जाएंगे अनादि माया सुप्तो जदा जीवा प्रबुद्धते, कहते अनादि माया से सुहा हुआ जिस दिन जीव जाग जाएगा तो फिर अजम अनिद्रम स्वप्न अद्वैतम बुद्धते तदा, उसी दिन कहेगा कि मैं अद्वैत हूं, मैं अखंड हूं, मैं सत हूं, मैं चित हूं, जिस दिन जाग जाएगा। ये आप समझ लीजिए कि जब तक आप नहीं बोलते कि मैं सत हूं चेतन हूं तब तक हम जागे नहीं है। भले लोगों को हम लोगों की आंखों में भले धूल झूलते रहें कि हम जागे हैं, जागे नहीं है। जब जाग जाएंगे तो फिर बोलेंगे पर अनलहक हो जाएगा, तब हो जाएगा कि नहीं महाराज जी, मंसूर की तरह बोलेंगे फिर, भले कोई हमारे को सूरी पर भी टांग दे तब हटेंगे नहीं, कहेंगे मैं सत हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद हूं। लेकिन जब तक नहीं जागे हैं तब तक लोगों को हम लोग भ्रम में डाल रहे हैं कि मैं जागा हुआ हूं। किसी को दिखाने के लिए हम लोग कहते हैं, बहुत ये सब दिखावट है ना हमारी, कि हम तो बहुत जागृत हैं, हम बहुत सावधान हैं। कोई पूछता तो कहते हैं हम बहुत सावधान हैं। यदि सावधान होते हो ना हम, तो फिर हमारे को रोड पर लिख के बोर्ड नहीं लगाने पड़ते कि सावधान रहो। क्यों बोर्ड लगाना पड़े महाराज जी, यदि कोई सभी लोग सावधान हैं, रोड में कोई सोया हुआ नहीं चलता है, जब भी चलता है तो अपने आप को जागा हुआ मान के चलता, तब भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी लिखना पड़ता है, भी सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी। तो यदि जागे हो तो ऐसा लिखना ही ना पड़े, रोड पे लिखा होता है रुको देखो और चलो, हर चौक पे लिखा होता है रुको देखो और चलो, लेकिन वो बोर्ड को हम समझते नहीं क्यों ऐसा लिखा है, क्यों लिखना पड़ रहा है रुको। वो कहते हैं कि रोको का मतलब होता सावधान हो जाओ, चौक है सावधान हो जाओ, रुको का मतलब रोक के सावधान हो, देखो चारों तरफ देखो। और शेर की दृष्टि कैसी होती है, सिंहावलोकन कहते ना, सिंहावलोकन सिंह की तरह देखना, सिंह इधर भी देखता इधर भी देखता उधर भी देखता और पीछे भी देखता है, पीछे से भी देखता, भी कोई हाथ नहीं रहा। तो हम लोग सावधान नहीं है, सावधान करने के लिए गुरु मारे कहते भी चेतना है तो चेत ले, जाग ले हो रे मना जाग ले हो, कहां गाफल सोया। उस दिन भी हमने निवेदन किया था कि गुरु महाराज क्यों कहते हैं कि जागो, इसका मतलब हम नहीं जागे हैं, केवल जागना ही बचा है, बाकी कुछ लेना देना कुछ नहीं है। जिस दिन जाग जाएंगे सपना रहेगा नहीं, ये पक्की बात है। संसार है जैसा सपना रहन का तैसा संसार, बिन सत बार न ला गई, ये भी दूसरी पंक्ति में महाराज कहते हैं बिन सत बार न ला गई, इसको जाते हुए देर नहीं लगेगी, ज्यो कागद बूंदार कुछ नहीं समय लगेगा, लेकिन हम जागे ही नहीं है। बस जागना केवल विशेष है, जब जाग जाएंगे, जागना कहाँ से है, जो अविद्या की नींद है उससे जागना है। जो शरीर करके तो हम जाग जाते हैं लेकिन अज्ञान से नहीं जागते हैं। शरीर करके तो रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, लेकिन स्वप्न जो होता है वो अज्ञान के कारण होता है, उसको शरीर से कोई मतलब नहीं होता। भले शरीर चलता हो, भले बैठा हो, स्वप्न तो आपको आता ही रहेगा। हम लोग स्वप्न में ही जी रहे हैं, सपना हमारा हटता ही नहीं है क्योंकि जागे नहीं है। तो जागेंगे तब जब महात्मा बताएंगे हमारे को कि जागना कैसे होता है। ये कहते हैं कि भेद ब्रह्म आदि जो पंचधा भवम, भेद ब्रह्म आदि पांच प्रकार का संसार है। समझ गए, भेद ब्रह्म है। भेद कहते एक दूसरे से अलगपना। अब इसको बताएंगे तो फिर भी समय लगेगा, बताना तो पड़ेगा ही। जो भेद है, एक दूसरे से भेद है हमारा, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, या आत्मा से अनात्मा का भेद है, वह जड़ है, वह चेतन है, वह कैसा है, प्रकाश स्वरूप है, वह कैसा है, आनंद स्वरूप है, संसार जो है कैसा है, दुख रूप है, इसमें सुख नाम की चीज कोई नहीं है, यह दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि ये रहने वाला नहीं है, ये अज्ञान का कार्य है। सुख तो केवल हमारा स्वरूप है ना, सुख का अर्थ है आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप हमारा है और कहीं से आनंद नहीं। आनंद आनंद सब कोक है, आनंद गुरु ते जाण्या। सभी लोग कहते हैं कि मैं आनंद लेता हूँ, कोई सिनेमे में लेता है, कोई खाने में लेता है, कोई किसी विषय में सुख लेता। सभी लोग अपने को कहते हैं मैं बड़ा आनंद ले रहा हूँ, आज बहुत आनंद आया। किसी पार्टी में बाजा बजता है या संगीत होता है तो कहते हैं बहुत आनंद आया। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि आनंद आनंद सब को है, सभी लोग कहते हैं बड़ा आनंद है, लेकिन आनंद कहते हमने कहीं नहीं देखा है, आनंद गुरु ते जाने, हमारे को कहीं से नहीं मिला। महाराज जी कहते हैं लोगों ने भले माना हो, हमारे को नहीं कहीं से मिला। वर्ष एक हो फिरे किने न हो परत्यो लायो, कहते ना भट्ट लोग कि वर्ष एक हो फिरे, एक वर्ष हमने घुमा है, किने न हो परत्यो लायो, हमारे को कोई नहीं मिला जो हमारी तसल्ली करा दे ना, हमारे को कोई नहीं मिला। गुरु अर्जन देव जी को कहते हैं भट्ट लोग कि हम महाराज एक साल घूमे हैं पूरा, बहुत हमने महात्मा देखे हैं पर किसी से हमारी तसल्ली नहीं हुई। वर्ष एक हो फिर किन्ने न परचो लायो, कहते हैं कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। सब लोग कहने वाले तो मिले हैं लेकिन अनुभव वाला कोई नहीं मिला। इसलिए जब अनुभव मिलता है ना, अनुभवी कौन होता, गुरु होता है। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाण्या, जाण्या आनंद सदा गुरते। जो किसी ने यदि आनंद जाण्या है ना, माना है ना, जिसको आनंद मिला है तो गुरु से ही मिला है। कृपा करे प्यारिया, कर कृपा। गुरु जी ने आनंद कैसे दिया, कृपा की। जब उनके शरण में हम गए तो हमारे ऊपर तरस किया उन्होंने, तो क्या कीता उन्होंने, क्या किया, कर कृपा केलबिख कटे। जो हमारे पाप थे ना, कलुष था हमारे अंदर, वो निकाला उन्होंने, तभी आनंद मिला। आनंद तो था हमारे अंदर लेकिन आनंद के ऊपर परत पड़ गई थी ना, कलुष की, पाप की। कर कृपा केलबिख कटे, किस प्रकार काटे केलबिश हमारे, कैसे निकाले उन्होंने। हमारी आंखों में क्या हुआ, धूल पड़ जाती ना जब, तो हमारे को साफ दिखाई नहीं पड़ता। हमारी आंखों में धूल पड़ गई थी अज्ञान की, तो गुरु जी ने क्या किया, ज्ञान अंजन सारिया, ज्ञान रूपी सुरमा डाला हमारे अंदर, पै गया देह सलाइया नैनी, ज्ञान अंजन गुर दिया, हमारी आंखों को साफ किया उन्होंने, और कुछ नहीं किया। गुरु जी ने आनंद कहीं से पकड़ाया नहीं हमारे को, ये नहीं कि उनके पास आनंद था तो झोले से निकाल के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। हमारी आंखों को साफ किया उन्होंने, और कुछ नहीं किया। हमारे को दिखता नहीं था, हमारे नेत्र जो ना उनसे धूल पड़ गई इसलिए साफ नहीं दिख रहा था। तो गुरु जी ने कहा सुरमा डालो इसमें, तो सुरमा कौन सा उन्होंने दिया, ज्ञान रूपी सुरमा। कर कृपा केलबिख कटे, ज्ञान अंजन सारिया। जब कृपा की तरस किया ज्ञान रूपी सुरमा डाला ना हमारे अंदर तो फिर क्या हुआ, ज्ञान अंजन सारिया। ते फिर जदों गुरु जी की कृपा जिसके ऊपर अंदरों जिनका मोह तिता अंदरों, ये है वेदांत, इसको वेदांत कहते हैं कि बाहर से मोह नहीं टूटता है, अंदर से टूटता है। बाहर से तो सब लोग कहते हैं कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मैं महाराज जी किसी को नहीं मानता हूं, लेकिन अंदर से रहता है ना, बाहर से दिखाए दिखाई तो पड़ता है, कहता है कि नहीं मैं तो मेरा किसी से मोह नहीं है, लेकिन अंदर से जो है छूटता नहीं है, अंदर बैठा रहता है ना, बीज रूप में रहता है। जब भी कोई सामने आता है तो उसी समय टपक पड़ता है अंदर से। तो गुरुजी ने अंदर से मारा है, बाहर से नहीं, अंदर से। एक बात और कबीर जी कहते हैं, कबीर सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक, जो सतगुर सूरमा है ना, सूरमा वो होता है जो लक्ष्य को भेद देता है एक ही बाण से, उसको सूरमा कहते हैं। एक रथी होता है, एक अतिरथी होता है, एक सूरमा होता है। तो रथी जो होता है वो केवल रथ वाले के साथ लड़ता है, रथी रथी के साथ लड़ता है, जो महारथी होता है वो केवल रथी के साथ नहीं लड़ता है, वो 10,000 आदमियों के साथ लड़ जाता है अकेला। तो इस प्रकार सूरमा होता है जो 10,00,000 आदमी को अकेला मार देता है, लेकिन एक बाण से मार देता है। भीष्म पितामह एक बाण मारते थे तो एक ही बार 10,000 आदमियों को मार देते थे, वो एक ही बाण से, सूरमे थे ना वो। तो गुरु कैसा सूरमा है, सतगुर सूरमे बाह्या बाण जो एक, एक शब्द रूपी बाण मारा मेरे गुरु जी ने तो मेरे से मेरे साथ क्या हुआ, लागते ही भोय गिर पड़िया, बरा कलेजे छेक। ऐसा बाण मारा शब्द रूपी बाण कि जब मेरे बाण लगा लागते ही भोय गिर पड़िया, तो मेरा जो अहम था ना, अहम रूपी सिर उसने काट दिया गुरु जी ने। जो रावण था ना, रावण अहम रूपी रावण, उसको उसने एक ही बाण से काट दिया। तो पर्या करे जे छेक, हमारे हृदय में छेद कर दिया उन्होंने एक ही बाण से, छेद किया तो जो हमारा अहम था ना उसको काट दिया। तो कहते हैं कि कर कृपा किल बिख कटे ज्ञान अंजर सारिया, अंदरों जिनका मोह तिटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया। उनका कार्य सिद्ध हो गया, गुरु जी का सत्य शब्द उनके अंदर चला गया, शब्द सच्चे सवारिया। कहे नानक एहो आनंद है, यहां पर महाराज ने निश्चय किया भी यह आनंद है जो मैं भी बता रहा हूं, कि जब मोह की निवृत्ति होती है ना, जैसे तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि बिन सत्संग न हरि कथा तेह बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। मोह जब तक नहीं जाता तब तक अनुराग नहीं होता प्रभु के चरणों में, प्रभु के चरणों में मोह नहीं होता, अनुराग होता है, प्रेम होता है। मोह में और प्रेम में अंतर है। लोग कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, पति पत्नी से कहती मैं आपसे प्रेम करती हूं, प्रेम नहीं करती है मोह करती है। जो प्रेमी होता है ना, जो प्रेमी होता है वो त्यागी होता है, स्वार्थी नहीं होता है। लेकिन जो हम प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं करते, हम मोह करते हैं, हमारा स्वार्थ है उसके शरीर के साथ। तो जो प्रेमी होता है वो त्यागी होता है, वो हमेशा त्याग ही करना चाहता है। उसका प्रेमी कहीं में रहे, उसको ये नहीं होता कि प्रेमी जब मेरे साथ में है तभी मेरा प्रेम है, उसका प्रेमी चला भी जाए शरीर छोड़ के तब भी उसका प्रेम घटता नहीं है, क्योंकि वो त्यागी है, स्वार्थी नहीं है। जो स्वार्थी होता है उसको आप एक दिन उसका स्वार्थ नहीं पूरा करते उसी समय छोड़ देता है, उसका आपके शरीर के साथ मोह था, प्रेम नहीं था। प्रेम का तो था त्याग, प्रेमी हमेशा त्याग करता है, वो कहते देने की कोशिश करता है, प्रेमी को लेने की इच्छा नहीं करता है। जो मोह वाला होता है वो लेने की इच्छा करता है, जब तक उसको मिलता है तब तक वो कहता है ऊपर से मेरा प्रेम है, प्रेम नहीं होता मोह होता है। तो ये कहते मोह जब तक नहीं जाता तब तक अनुराग नहीं होता, प्रेम नहीं होता। मोह को छोड़ेंगे, संसार का मोह छूटेगा तो प्रभु के चरणों में अनुराग होगा। तो बात ये चल रही है कि भेद ब्रह्मादि जो 5 प्रकार का संसार है ना, वो कैसा है, त्रिविध तापता तप्त सो दबम। ये 5 प्रकार का जो संसार है ना, ये 3 तापों से पीड़ित है, ग्रस्त है। ये सारे संसार में तीन ताप हैं जो दुखी कर रहे हैं। कौन से तीन ताप हैं? आदि व्याधि उपाधि बोलते हैं पंजाबी में, वैसे बोलते हैं एक आध्यात्मिक ताप हैं, दूसरे आदि दैविक हैं, तीसरे आदि भौतिक हैं। आदि आदि कहते हैं जो शरीर के हैं, शरीर के जो ताप है ना, शरीर के और मन के, उनको आदि कहते हैं। आध्यात्मिक ताप हैं, शरीर को फोड़ा फिंसी होता है, चोट लग जाती है, ये भी ताप है। बुखार चढ़ जाता है, जैसे कहते हैं बुखार हो गया, वो भी ताप है। और दूसरे मानसिक ताप हैं, जो हमारे मन को होते हैं, हर्ष होता है, शोक होता है, खुशी होती है, वो भी ताप हैं। तो वो ताप हमारे को दुखी कर रहे हैं। और दूसरे आदि भौतिक जो जीवों से होते हैं, व्याघ्र से, मछली से, किसी कुत्ता से, जो काट देते ना हमारे को, मारते हैं जीव लोग, या एक दूसरे से होता है, दूसरे मनुष्य ने दूसरे को मारा काटा, वो आदि भौतिक ताप है। और तीसरे आदि दैविक हैं, जो देवता जब कुपित हो जाते हैं तब होते हैं, देवता लोग कुपित हो गए हमारे ऊपर, वर्षा ज़्यादा हो गई, या फिर कई बार वर्षा होती नहीं है, वो देवता जब कुपित हो जाते हैं। तो ये तीन ताप हैं जो हमारे को दुखी कर रहे हैं। इन तीन तापों के अंदर पूरे संसार के ताप आ जाते हैं, सारे संसार के। इन तीन तापों की निवृत्ति कैसे होती है? इन तीन तापों को हटाने वाला कौन है? गुरु महाराज जी कहते हैं तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको विघ्न न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। तीन तापों की निवृत्ति बताते हैं कि कौन है तीन ताप आपके हटाने वाला। सारा संसार कह दिया कि तीन तापों से ग्रस्त है, तो संसार का कोई आदमी आपके ताप हटाएगा? पूरे संसार के लोग जो है तीन तापों से पीड़ित हैं, तो हटाएगा कौन? संसार जब पूरा ले लिया ना, तो पूरे में सभी आ गए, कोई नहीं बचा, तो हटाने वाला कहाँ से मिलेगा? पूरा संसार तो तीन तापों से ग्रस्त है, हटाएगा कौन? तुम्हारे कहते हैं जो तीने ताप निवारण हारा, जो तीन तापों की निवृत्ति करने वाला है वो हटाएगा। वो क्या करता है? दुख हंता, दुखों का हनन कर देता है। वो कौन है? सुख रास, जो सुखों की राशि है, थोड़ा बहुत सुख जिसमें आता वो नहीं हटाएगा, उसके अंदर भी तीन ताप हैं। इसलिए वो तीने ताप निवारण हारा जो है वो कौन है? उसकी शक्ल तो हमने कभी देखी नहीं है, कोई बताएगा रहता कहाँ है? पूरा संसार में तो कभी हमने देखा नहीं है, तो रहेगा कहाँ? उसको ढूंढेंगे कहाँ से? उसको कहाँ से ढूंढेंगे? उसको ढूंढेंगे कहाँ से? तो कहते हैं कि ढूंढना कहीं बाहर से नहीं है, यहीं रहता है। प्रीतम जान ले हो मन माही, आप प्रियतम को मिलना चाहते हैं ना, कहते ये मेरा प्रियतम है, तो प्रियतम सबसे प्रिय जो होता है उसको प्रियतम कहते हैं हम लोग, ये मेरा प्रियतम है। तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं प्रियतम जान, तीने ताप निवारण हारा कौन है? प्रियतम। सभी लोग अपने प्रीतम से जितना प्रेम करते हैं और किसी से नहीं करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं प्रियतम जान, संसार में जानने वाली वस्तु है प्रियतम। हमने भी संसार में बहुत लोगों को प्रियतम बना रखा है, हमारा हर एक का कोई प्रियतम होता है, लेकिन वो हमारी आंखों से देखते हुए चले जाता है, तो फिर कैसा प्रियतम हुआ? प्रियतम नहीं था ना, यदि प्रियतम होता तो जाता नहीं। हम तो मानते हैं ना उसको अपनी जिंदगी में, हर एक का एक प्रियतम होता है, लेकिन उसके देखते हुए जाता है तब वो, उसको मोह के कारण सारी उम्र दुखी होना पड़ता कि प्रियतम चला गया मेरा। तो यदि प्रियतम होता तो जाता नहीं, प्रिय चला जाता है, प्रियतम नहीं जाता। प्रिय भी चला जाता है, प्रियतर भी चला जाता है, प्रियतम नहीं जाता। तीन शब्द हैं, एक प्रिय शब्द है, एक प्रियतर शब्द है, दूसरा प्रियतम शब्द है। प्रिय भी हमारे चले जाते हैं, जितने संसार के पदार्थ हैं प्रिय है हमारे को, लेकिन चले जाते हैं। जो हमारे इंद्रिय है, हमारा अंतःकरण है, वो प्रियतर है, वो भी चला जाता है, लेकिन जो हमारा अपना आप है वो प्रियतम है, वो नहीं जाता कहीं। जानना उसी को हमने प्रियतम जान, कहते हैं तीने ताप निवारण हारा कौन है जो प्रियतम है। निर्भव जपे सगल भव मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे। तो ये कहते हैं जो ताप है ना हमारे को दुखी करते हैं उनको निवारण हारा जो है उसको याद करूं। आप जिसको कहते हैं डॉक्टर को, वो ताप हटा नहीं सकता आपका। ताप के लिए आप किसके पास जाते हैं? वैद्य के पास। तो वैद्य भी तो उस तीन तापों से ग्रस्त है कि नहीं? आप उसी के पास जा रहे जो स्वयं रोगी है, उसके पास हम अपना रोग लेकर के जा करके घूम रहे हैं। वो आपका ताप हटा नहीं सकता, क्योंकि गुरु नानक देव जी को एक बार छोटी उम्र में जब खाना पीना छोड़ दिया, उदासीन अवस्था में मर रहते थे। कहीं बाहर गए, कहीं में गए, गाय चराने गए, वहीं बैठ गए। कहीं निकल जाते सुबह खा करके, बाहर जा करके बैठे रहते थे। उदासीन अवस्था में हो गए, संसार से कोई मतलब नहीं, जैसे राम भगवान हो गए थे। तो लोगों ने कहा उनके माता पिता को कि आपके बच्चे को कुछ छाया हो गई, भूत ने पकड़ लिया, वैद्य बुलाओ, कोई जो झाड़ने वाला आता है उसको बुलाओ, इनको कोई ना कोई भूत पकड़ लिया। तो महाराज जी तो सब जानते थे लेकिन बोले नहीं, उदासीन अवस्था में रहे। तो हरदास जी वैद्य महाराज आ गए झाड़ने के लिए। हरदास जी महाराज को लाए बुला के, उन्होंने मतलब महाराज जी की नब्ज पकड़ के देखा कि कुछ ना कुछ इनको हुआ होगा। तो महाराज जी कहते, वैद्य जी आपसे एक प्रश्न पूछूं। उन्होंने पूछा, आपको क्या हुआ? कहते, आपको आप बताते क्यों नहीं, मेरे को बताइए क्या हुआ। कहते, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। कहते, नहीं कुछ तो हुआ है ना, बताइए। वो कहते हैं, जो मैं कहता हूँ आप बता सकते हैं मेरे को? गुरु नानक जी कहते हैं, जो मेरे को हुआ है वो बता सकते हैं आप? कहते, आप बताएंगे तो मैं इलाज करूँगा। महाराज जी कहते, वैद्य बुलाया वैद्यगी, पकड़ डोले बाँ, भोला वैद्य ना जानाई। अरे वैद्य जी, तुम तो भोले हो, तुम जानते नहीं हो। कर्क करेजे माह, हमारे करेजे, हमारे हृदय में जो कष्ट है उसको आप जानते नहीं है। वैदा वैद सुवैद तू, महाराज कहते उसको इशारे से, किसी को नहीं पता चल रहा भी क्या बातचीत हो रही है। कहते, हे वैद जी, महाराज तुम बहुत श्रेष्ठ वैद्य, मैं मानता हूं आपको। कब मानूंगा? पहला रोग पहचान, मेरे बताने से पहले बताओ मेरे को क्या रोग है, तब मैं आपको जानूंगा कि आप श्रेष्ठ वैद्य हैं। कई लोग होते हैं ना वैद्य, वो कहते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, केवल आप हमारे को नब्ज दिखाइए। वैद्य तो वही होता है ना, जिसको आप नब्ज दिखाओ तो आपको कहेगा आपको क्या रोग है। यदि आपने पहले बता दिया मेरे को बुखार है तो क्या देगा वो? रोग तो आपने पहले बता दिया उनको, तो उसने क्या जाना? उसके पास एक पड़ी हुई टिकिया है, आपको दे देगा वो। आपको विश्वास हो जाता भी इस टिकिया से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वैद्य ने कुछ नहीं किया, रोग आपने स्वयं उसको बता दिया। वैद्य कौन सा हुआ? महाराज कहते हैं कि वैदा वैद स्वैद तू, पहला रोग पहचान, तू पहले बता, तू पहले अपना रोग बता भी तेनू पता है कि नहीं है। पहला करते पहले अपने अंदर देख कि तेरे को कौन सा रोग है, यदि तुम अपना ठीक कर लोगे तो मेरा भी ठीक कर दोगे। तो ठीक करने वाला कौन है? तीने ताप निवारण हारा। तीन ताप की बात चल रही है कि तीन ताप से सारा संसार ग्रस्त है। तो तीन ताप जो आदि व्याधि उपाधि है वो वही बता सकता है जो तीन तापों से परे है, जो तीन तापों से अलग है, जिसको तभी तीन ताप नहीं होते हैं। तो तीन ताप तीन गुणों वालों को होते हैं, जो तीन गुणों के अंदर रहते हैं ना उनको तीन ताप होते हैं। तो जो तीनों से बाहर है उसको तीन ताप नहीं होते। साध की उपमा त्यो गुण ते दूर, ये कहते हैं गुरु अर्जन देव जी सुखनी साहब में, साध की उपमा त्यो गुण ते दूर। जो साधु महात्मा है उनकी उपमा, उनकी महानता क्या है? तीन गुणों से परे है। तीन गुणों वाला उनकी उपमा नहीं बता सकता। तो तीन ताप भी तो सारे संसार का मतलब, जो तीन ताप हैं वो तीन गुणों वालों को होते हैं। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास, तथा को विघ्न न को लाग जाकि प्रभ आगे अरदास। इसका मतलब जिसकी प्रार्थना प्रभु के आगे होती है ना, जो उसका पुजारी होता है, क्योंकि वो सुखों की रास है। वो तीन ताप को हटाने वाला है। कैसा है? अविनाशी जीवन को दाता, वो अविनाशी दाता है, विनाश नहीं होता उसका। ये कहते हैं तीन ताप ना त्रिविध तापता तब तो सो दवम, ये संसार रूपी जो दव है ना वन है, तीन तापों से पीड़ित है, तो इसको हटाने के लिए क्या है? कहते हैं पांच जो आपने भ्रांति बताई ना, पांच प्रकार का भ्रम है, उसको हटाने के लिए कोई आपके पास दवाई है कि नहीं है? कैसे हटेगा? जैसे मानो संसार की कोई चीज होती है ना, जैसे हमारे को कोई वृक्ष काटना है तो उसके लिए कुल्हाड़ी चाहिए, तो कुल्हाड़ी से काट देंगे, वो हमारे सामने है तो उसको मिथ्या को काटने के लिए मिथ्या कुल्हाड़ी हमारे पास, ये काट देंगे। ये भी मिथ्या है, पांच जो भ्रम है इसको काटने के लिए कुल्हाड़ी कौन सी है? कुल्हाड़ी भी तो चाहिए। कहते हैं कुल्हाड़ी हम बताते हैं आपको, गुरु जी के पास है परशु पंचधा। परशु कहते हैं परसा, फरसा, फरसा होता है ना जिससे काटते हैं उसको, फरसा पकड़ा नहीं होता उसको कहते हैं, उससे काटो कुल्हाड़ी से। परशु पंचधा पांच प्रकार की कुल्हाड़ियां हैं, कौन सी? जुक्ति, जुक्ति रूपी कुल्हाड़ी है। जुक्ति कहते हैं दृष्टांत को, उदाहरण को कहते हैं। पांच प्रकार के दृष्टांत हम बताएंगे वही कुल्हाड़ी है, उससे क्या कर? कर विचार। पांच प्रकार की जुक्तियां बताएंगे ना जब, उनके द्वारा तुम विचार करके, तो ये जो पांच प्रकार की भ्रांतियां है ना, जो पांच प्रकार की, इनको क्या कर? छेदन कर, इनको छेदन कर, इनको काट दे। ना डरी, डर मत, ये नहीं कि इसको काटने के लिए तेरे पास कुल्हाड़ी नहीं है, कुल्हाड़ी हम दे देते हैं, जब कुल्हाड़ी आ जाएगी तो काट तो देंगे हम, कुल्हाड़ी नहीं हमारे पास। और जैसे आपने कहते ना पंद्रहवें अध्याय में है ना, कहाँ से शुरू होता हमारी पंद्रहवा अध्याय? ऊर्ध्व मूल मध शाखा, ये संसार कैसा? ऊर्ध्व मूल मध शाखा, ऊर्ध्व मूल, वही आगे दृष्टांत देंगे ना, जैसे हम किनारे पर खड़े हैं नदी के, तो वहां वृक्ष दिखाई देता ना, कैसे दिखाई देता है? शाखाएं उसकी नीचे है और उसकी जड़ें ऊपर है। कभी देखा पानी में? पानी में देखो जो वृक्ष बाहर में खड़ा ना किनारे पर, उसको अंदर देखो तो उसकी जो ऊपर वाला पासा नीचे दिखता है, नीचे वाला ऊपर देखता है। तो हमारे यहां से शुरू करते हैं, ऊर्ध्व मूल मध शाख मस्वत्थम अश्वत्थम, मतलब वट वृक्ष, ये कैसा है? ऊर्ध्व मूल मध शाख मस्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांश यस्य परणानी। तो ये कहते हैं कि पांच प्रकार की आप हमको जुतियां हमारे पास हैं, वो आपको बताएंगे, एक एक युक्ति से एक एक भ्रांति को छेदन करो, काट दो, तो फिर आपको संसार जो बन है ना ये दुखी नहीं करता। दुखी तब करता है जब तक हमारे पास युक्ति नहीं है। युक्ति कौन बताता है? जोर ना युक्ति छुटे संसार, यही बात है ना वहां जपजी साहब में, जोर ना किसी के पास ऐसा बल नहीं है कि संसार को हटा दे, जुक्ति छूटा है संसार, जुक्ति से छूटता है, ऐसे नहीं छूटता। जोर कोई करता रहे जैसे हाथ जोर कर वेखे सोए, किसी के पास है तो जोर लगा के देख ले, वो अंत को चाहन जो गए सो आए अंत गवाए, जो इस संसार का अंत लेना चाहते थे वो स्वयं उनका अंत हो गया, लेकिन संसार का अंत नहीं आया। युक्ति नहीं उनके पास, युक्ति बताते हैं महात्मा गुरु लोग, और युक्ति बताते हैं सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। तो क्या करते हैं? राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम, दो सेवा के लिए खड़े हैं कहते आपके, एक भगवान है एक संत है। संत क्या कहते हैं? वो आपको युक्ति बताते हैं। तो जब युक्ति बताते हैं तो भगवान क्या करते हैं? मोक्ष देते हैं। दोनों आपकी सेवा के लिए खड़े हैं और दोनों आपको बताने के लिए दो है ना, वो आपको लगता है कि संत हमारे को युक्ति बताते हैं और भगवान मोक्ष देते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। मोक्ष कहाँ से देंगे भगवान? भगवान के पास मोक्ष नहीं है कि आपको पकड़ के दे देंगे, वो मोक्ष उनके पास नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि भगवान आपको मोक्ष देते हैं और संत नाम जपाते हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं कि हर हर जन दो एक है, अंतर नहीं है, हरी हरी जन दो एक है। आपको बताया जाता कि भगवान अलग है संत अलग हैं, लेकिन दो नहीं है। बेबे विचार कश ना है, जल ते उपज तरंग ज्यो जल ही बिखै समा है। जैसे जला जल तरंग और फेन बुरदा जलते फेन ना हो ना, उसी प्रकार केवल बताया जाता है गुरु गोविंद दोनों खड़े कांकू लागो पाए, बलहारी गुर अपने जिन गोविंद दियो बताए। इसलिए थोड़ा सा व्यवहार में गुरु की जो है ना महानता बहुत ज़्यादा है, क्यों गुरु जो है उसके द्वारा गोविंद मिलता है, वो भी व्यवहार में। लेकिन गुरु गोविंद का अंतर नहीं ना, गुर गोविंद दयाल गुर गुर पूरन नारायण है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मेरा वैद बात चल रही थी तीन गुणों तीन तापों की, तो महाराज जी कहते हैं ना, भक्त जी कहते हैं मेरा वैद गुरु गोविंदा। मेरा वैद्य कौन है? जहां तो मेरे गुरु हैं जहां गोविंद है, दोनों मेरे वैद्य हैं। मेरा वैद गुरु गोविंदा, वो हैं मेरे वैद्य दोनों। जब मैं उनके पास जाता हूँ तो फिर तीन तापों की निवृत्ति होती है, क्योंकि वो दोनों ही तीनों ताप निवारण हारा हैं। गोविंद भी तीन तापों को नष्ट करने वाला है और गुरु भी गोविंद का रूप है ना, दोनों गुरु और गोविंद। तब कहते हैं महाराज जी आद गुराय नमः, जुगाद गुराय नमः, सत गुराय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः, सबको नमस्कार कर रहे हैं ना। इसलिए कर रहे हैं कि उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी देखो आद गुराए नमः, गुरु नानक देव जी को नमस्कार है, जुगाद गुराए नमः, गुरु अंगद देव जी को नमस्कार है, सत गुराए नमः, गुरु अमरदास जी को नमस्कार है, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं श्री गुरुदेवाय नमः। कहते हैं सतगुरु का अर्थ है क्या हुआ? सतगुरु का अर्थ मेरे दादा गुरु, यही हुआ ना। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, अब हम लोग सतगुरु शब्द बोलते हैं ना, तो सतगुरु का अर्थ क्या हुआ? दादा गुरु। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं मेरे अपने दादा गुरु जी को नमस्कार है, श्री गुरुदेवाय नमः, श्री लगाया उन्होंने अपने गुरु जी के साथ। गुरु रामदास महाराज जी के पास जब उनका नाम लिया तो श्री गुरुदेवाय नमः, तो गुरु अमरदास जी को कहा सतगुराय नमः। इसका मतलब सतगुरु का अर्थ मेरे दादा गुरु, तो गुरु का अर्थ गुरु, सतगुरु का अर्थ दादा गुरु। तो इस प्रकार जब हम वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जमकी फंदा, कैसे होता है? मेरे गोविंद और मेरे गुरु मेरे वैद्य हैं, क्या करते हैं? हर हर नाम औखद मुख देवे, हरी हरी नाम जपने रूपी औषधि जब मेरे मुंह में डालते हैं तो काटे जमकी फंदा, जो फांसी है ना जमों की वो काट देते हैं। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास, ताको बिघन न को लागे जाकी प्रभ के अरदास। हरि ओम पूर्ण मदा पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
गुरुदेव गुरु कृपा जय नर को
जी
नानक लीन भयो गोविंद जो
जी। मुक्त जुगत मत सत करी, मुक्त जुगत मत सत करी प्रबंधन काट बेकार। ये भी तो अभी पंक्ति आई नहीं, अभी आएगी ये पंक्ति।